हमने पहले सुना था कि कितना महत्वपूर्ण है वैष्णव के बारे में श्रवण करना, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में तेजी से परिवर्तन ले आता है। तो आज हम उस समय के लिए श्रील हरिदास ठाकुर के बारे में सुनेंगे। तो हरिदास ठाकुर का वर्णन, उनके जीवन चरित्र का वर्णन दोन आचार्यों ने बहुत विस्तार से किया है। एक है श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने अपने ग्रंथ में चैतन्य भागवत में वर्णन किया है, और दूसरे आचार्य हैं श्रील कृष्णदास कविराज, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया है। तो ये हरिदास ठाकुर ऐसे महान वैष्णव थे कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु भी उनका गुणगान करते थे, बहुत अधिक उनकी प्रशंसा करते थे। और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को स्थापित करने के लिए कि जो भक्त हैं या वैष्णव हैं, वो बाकी सब चीज़ों से श्रेष्ठ हैं, बाकी ब्राह्मण या कोई कर्मकांडी हैं, इन सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है, चाहे वो वैष्णव किसी भी कुल में जन क्यों ना उसने ग्रहण किया हो। चांडाल है यदि कृष्ण बोले, मतलब चांडाल हो और यदि उसके मुंह से कृष्ण निकलता है तो वो चांडाल नहीं है। विप्र विप्र है यदि असत पथे चले, या कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण होके भी असत पथ को अपना वर्तन करता है, उस रास्ते में चलता है, कृष्ण भक्ति नहीं करता है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को बहुत तीव्रता से स्थापित किया है कि केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र केने नय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कि चाहे कोई केबा विप्र केबा न्यासी शूद्र क्यों ना हो, सन्यासी क्यों ना हो, ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन जो कृष्ण तत्व को जानता है, कृष्ण के तत्व को जानना मीन्स भगवान भगवद गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। कि हे अर्जुन, मेरे इस दिव्यता को जो जानता है कि मेरे जो जन्म है, मेरे कार्यकलाप है, वो सामान्य नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति पुनर्जन्म नैति मामेति, वो पुनर्जन्म नहीं लेता, मेरे पास आता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु इस चीज को स्थापित करते हैं हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र से। और इनका जीवन चरित्र बहुत ही अद्भुत है और किसी भक्तों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। हर एक उनके जीवन के हर एक कार्यकलापों से किसी एक जो प्रैक्टिस कर रहा है साधक, भक्ति का जो अभ्यास कर रहा है, उसके लिए बहुत अधिक शिक्षाप्रद हैं। और विशेष रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हैं, तो लोग हमें हरे कृष्ण आंदोलन कह के पुकारते हैं, या फिर हमारे भक्त जहाँ भी चलते हैं बाहर, तो लोग तुरंत अपनी उंगली करते हैं कि ये देखो ये हरे कृष्ण पीपल। हाँ, तो मेन क्या है कि लोग इस बात के लिए कह रहे हैं कि ये लोग हरे कृष्ण पीपल हैं, ऐसे नहीं कि ये प्रभुपाद पीपल। लोग नहीं कहते कि प्रभुपाद वाले लोग आ गए। बाकी जगहों में क्या है कि वहाँ चाहे कोई आसाराम के लोग जा रहे तो वो सीधा उनका नाम लेंगे, आसाराम के लोग हैं। लेकिन यहाँ हमारी परंपरा की खासियत क्या है, हमारे जो महान आचार्य हुए हैं, वैष्णव हुए हैं, उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा है, उन्होंने किसको आगे रखा है, कृष्ण को। इसलिए सब लोग कृष्ण को अधिक जानते हैं। ये हरे कृष्ण आंदोलन को मीन्स कृष्ण को प्रमुख रूप से श्रील प्रभुपाद ने सबसे आगे रखा और प्रभुपाद बहुत विनम्र बने रहे। तो आजकल के जो ढोंगीज हैं, साधुज हैं, जिनको केवल अपने नाम और उसके प्रतिष्ठा के पीछे हैं, तो उनको भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये खासियत है श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है और बाकी सबका जो आंदोलन है। तो जब हमें लोग कहते हैं कि ये हरे कृष्णा पीपल हैं या हरे कृष्णा वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस बात को जाना जाता है कि हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करने में एक्सपर्ट होने चाहिए, मतलब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में कुशल होने चाहिए, प्रवीण होने चाहिए। तो ये कोई योगा सोसाइटी नहीं है। जैसे आप हरे कृष्ण सोसाइटी में हो तो आपको किस चीज में एक्सपर्ट होना चाहिए? योगा करने में? हाँ नहीं, किस चीज में? स्वाभाविक रूप से हाँ हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों? तो ये आवश्यक है, हमें हरे कृष्ण सोसाइटी में है और हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक चैंटिंग और हरे कृष्ण महामंत्र का जो उच्चारण है उसमें हम सीरियस नहीं है, तो हरे कृष्ण सोसाइटी में हम नहीं है, मतलब होकर भी बाहर है। तो ये प्रमुख रूप से देखा जाता है, इस बात को स्वाभाविक रूप से हमें खुद ही अनुभव करना चाहिए, तब हम खुद सोचेंगे कि हरे कृष्णा सोसाइटी में है। इसलिए शास्त्र भी वर्णन करते हैं कि कलियुगा में कलियुग जो सागर है और इससे पार करना है तो आपको एक्सपर्ट स्विमर होना होगा। हाँ, तो बेस्ट जो चांटर है वो इस सागर को पार कर सकता है। तो अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की शिक्षा दी श्रील नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन चरित्र से। और हरिदास ठाकुर जो इतने महान थे कि आगे अब सुनेंगे कि जगन्नाथपुरी में जब वो थे तो चैतन्य महाप्रभु उनसे क्लास सुनते थे। कौन सी क्लास लेते थे? जपा की क्लास। जपा रिट्रीट होता था उनका, जपा का सेमिनार एवरीडे। एक बुक हरिनाम चिंतामणि जिसका उगम हो गया। तो चैतन्य महाप्रभु जाते हैं स्नान करने, स्नान करके आते और हरिदास ठाकुर को मिलते हैं समुन्द्र के किनारे। समुन्द्र से स्नान करके आके उनको उनके निवास स्थान सिद्ध बकुल नाम जो स्थान है जगन्नाथपुरी में वहां मिलते हैं और फिर कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं हरिनाम के बारे में, कैसे चैंटिंग करना चाहिए हरिनाम, कौन कौन सी स्थिति में जब करते हैं, तो बहुत सारे अपराध क्या क्या है, अशुद्ध नाम क्या है, नाभावास क्या है। तो ये सब शिक्षा स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से लेते हैं और खुद सुनते हैं अटेंटिवली। तो हरिदास ठाकुर का ये गुणगान चैतन्य महाप्रभु ने किया है और महाप्रभु को बहुत आनंद आता था हरिदास ठाकुर के संग में। तो हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है ये दो ग्रंथों में हमें विशेष रूप से पढ़ने को मिलता है, एक चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत। तो इतना विस्तार से किसी और वैष्णव का बारे में बोला नहीं है चैतन्य चरितामृत में या चैतन्य भागवत में जितना हरिदास ठाकुर के बारे में बोला है। चैतन्य चरितामृत में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी सबका वर्णन है, कई और महाप्रभु के भक्तों का वर्णन है, लेकिन उनका बहुत कम मात्रा में। लेकिन किसी एक वैष्णव को इतना अधिक गुणगान किया है कृष्णदास कविराज ने या फिर वृंदावन दास ठाकुर ने तो वो श्रील हरिदास ठाकुर है। पूरे अध्याय के अध्याय लिख दिए हैं हरिदास ठाकुर ने, शरीर छोड़ा पूरा एक अध्याय है उसका, हरिदास ठाकुर की महिमा उसके एक दो अध्याय है। हाँ, हरिदास ठाकुर के जो ऐसे जीवन चरित्र है, तो वृंदावन दास ठाकुर ने भी उनका गुणगान किया है। और वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि कोई व्यक्ति श्रील हरिदास ठाकुर के जीवन को सुनता है और उसका मनन करता है तो निश्चित रूप से कृष्ण उसके हृदय में निवास करेंगे। मतलब कृष्ण बहुत सरलता से उस व्यक्ति के हो जाएंगे जो हरिदास ठाकुर को बारे में सुनता है या उनकी चर्चा करता है। और वो कहते हैं कि जो हरिदास ठाकुर के बारे में सुनेगा तो मैं उस व्यक्ति के चरणों को धोके पीऊंगा। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, मतलब इतना ग्लोरियस है हरिदास ठाकुर का जो चरित्र है, क्योंकि हमारे लिए बहुत अधिक प्रैक्टिकल एप्लीकेबल है हमारे लाइफ में जो हम जिस सिचुएशन अभी जी रहे हैं। तो ऐसे जो हरिदास ठाकुर हैं जो चैतन्य लीला में बहुत महान भक्त हुए हैं जिनके बारे में वर्णन आता है कि वो मूलतः कौन है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो भी संगी है वो कृष्ण के नित्य पार्षद हैं। गौरांगेरा संगी गने नित्य सिद्ध करी माने, तो महाप्रभु के भक्तों को कभी नॉर्मल नहीं समझना है। चैतन्य महाप्रभु के जो भी भक्त हैं वो कोई सामान्य भक्त नहीं है, वो नित्य भक्त हैं। उनके नित्य संगी जो भगवान के साथ आए और उन्होंने दिव्य लीलाएं कही। और कोई व्यक्ति ऐसा जान लेता है गौरांगेरा संगी गने नित्य सिद्ध करी माने सेजाय ब्रजेंद्र सुत पाश, ऐसा जानने मात्र से वो व्यक्ति ब्रजेंद्र सुत, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण के पास स्वाभाविक रूप से चला जाएगा। तो हम हर बार सुनते हैं, तो कृष्ण लीला में ये जो हरिदास ठाकुर हैं, जिनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे जिनका नाम था कवि कर्णपुर, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था गौर गणोदेश दीपिका। तो गौर गण, गौर मीन्स गौरांग महाप्रभु, गण मीन्स उनके भक्त, गौर गणोदेश उनको उद्देश्य किया गया है दीपिका, उनके बारे में बताया कि ये जो चैतन्य लीला में आप जिन वैष्णवों को देखते हो सुनते हो उनके दिव्य कार्यकलापों को, तो वो कृष्ण लीला में कौन कौन थे ये सब उन्होंने लिखा। तो जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा कवि कर्णपुर में, कवि कर्णपुर ने, तो उनका पहले नाम पुरी दास था और ये नाम महाप्रभु ने रखा था उनका नाम। तो चैतन्य महाप्रभु जब मिलने गए, ये छोटे से बालक ही थे माँ की गोद में, तो महाप्रभु ने अपने पाव का अंगूठा उस बालक के मुंह में डाल दिया कवि, तब 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 वो बालक थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, तो महाप्रभु के ऊपर ऐसे गीत निकलने लगे उनके गुणगान में उनके मुंह से, तो कवि कर्णपुर कहा जाता है उनको तब से। तो ऐसे जो महान भक्त हुए हैं उन्होंने अपने उस ग्रंथ में वर्णन किया है श्री हरिदास ठाकुर का, जिसमें वो कहते हैं कि ये जो हरिदास ठाकुर हैं कृष्ण लीला में ब्रह्मा जी थे, जब और वही ब्रह्मा जी अभी गौरांग महाप्रभु की लीला में हरिदास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए हैं, ये दिव्य लीला कर रहे हैं। और भी कहा जाता है कि वो प्रहलाद के भी छोटे से उनके अंदर आवेश हैं, तो इस प्रकार से ऐसा वर्णन आता है। तो जब भगवान कृष्ण वृंदावन में अवतरित हुए थे तो उन्होंने कई प्रकार की दिव्य लीलाएं की, और भगवान कृष्ण वृंदावन में होते हैं तो वो अपने आप को भगवान के रूप में प्रदर्शित नहीं करते हैं, है ना, तो एक गोप गोप सखा गोप बाल के रूप में नॉर्मल, क्योंकि यही खासियत है एक्चुअली कि बहुत अधिक ऐश्वर्य में आनंद नहीं अनुभव होता व्यक्ति को, तो वो छोटा बनना चाहता है। जैसे आप जितना बड़ा हो जाओगे, जितने बड़े बड़े पोजीशन मिलेंगे, तो आप अकेले अकेले हो जाओगे, है कि नहीं, एकाके एकाके, और फिर संबंध बहुत कम रिलेशंस रहेंगे, तो अच्छा नहीं है। तो जब आप छोटे होते हो, जैसे कोई बहुत सीनियर भक्त हो गया, तो उसका जीवन ऐसे हो जाता है कि वो पूरा अलग ही हो जाता है, चाहे कोई प्रेसिडेंट बन गया या कोई और कुछ बन गया, सन्यासी हो गया, तो लेकिन जो छोटा भक्त होता है वो पूरा सब भक्तों का संग लेता है, सबकी सेवा करने का मौका मिलता है, कितनी अद्भुत बात है। तो भगवान को भी ऐसे ही आनंद अनुभव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपनी ये दिव्य लीलाएं प्रकट की और अपने सब भक्तों के संग में वृंदावन में, और अपना जो मूलतः भगवत्ता है उसको खत्म कर दिया, मतलब भूल गए, और नॉर्मल एक गौल बाल के रूप में कृष्ण लीला करने लगे और गव्य चराने ले जाते थे। पूरे ब्रह्मांड के जो ओनर हैं, हाँ, वो बस अपने हाथ में कुछ स्टिक लेकर और सिंपल सा धोती और वो सब डाल के और जा रहे हैं गव्य चराने। अभी इसमें कोई बिग अचीवमेंट है क्या, कोई बहुत अधिक पढ़ाई कर ले और हम उसको भेज दें, हाँ, कि आप PhD के बाद ये आपका जॉब है कि गव्य चराने ले जाना, तो आनंद अनुभव करेगा नहीं, डिप्रेशन में वो सुसाइड कर लेगा तो ऐसे नहीं। तो लेकिन कृष्ण ये है कि कृष्ण अपने भक्तों के संग में उस सेवा का आनंद अनुभव करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि मैंने पढ़ा था कि जो बिल क्लिंटन कौन है जो सब जिनके कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, बिल गेट, हाँ बिल गेट ये नाम ही बड़े अद्भुत है बिल गेट, तो ये बिल गेट के बारे में वर्णन आता है कि वो इतना उनके पास ऐश्वर्य है लेकिन उनके पास कोई नहीं है क्लोज उनके, तो वो रात को क्या करते हैं, अपना सब चेंज करके अपने वो छोटे छोटे इसमें जाते हैं झोपड़ियों में जहाँ नॉर्मल लोग, और उनसे फ्रेंडशिप करके उनके साथ जीवन यापन करते हैं। हाँ, तो वे वही हैं, इससे देख सकते हैं। इसी प्रकार से कृष्ण भी ये अपना दिव्य लीला करते हैं और अपनी भगवत्ता को वो छुपाते हैं। अब वृंदावन के लोग ये मानते, ये उनके मन में है ही नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो तो आप कृष्ण को स्वीकार करते हैं किस रूप में, कि ये तो हमारा बालक है, ये तो हमारा रिलेटिव है, इस प्रकार से। हर कृष्ण भी वैसा ही एक्ट करते हैं और कृष्ण बहुत अधिक आनंद अनुभव करते हैं। तो कृष्ण ने ऐसे ही जब गव्य चराने जाते थे और एक दिन भगवान उन सारे बाल सखाओं के साथ यमुना के किनारे में थे, तो सब लोग ये प्रसाद लेते थे सुबह के समय में। तो जब तक ये कृष्ण का नित्य क्रम क्या था पूरे दिन का, कि जब तक इस एक आसुर को मारेंगे नहीं ना, तब तक ब्रेकफास्ट नहीं लेंगे, ये उनका स्वाभाविक था। ये मतलब ऐसे नहीं कि हम कृष्णा बुक में एक ही आसुर के बारे में पढ़ते कि आज उन्होंने अघासुर को मारा, नहीं, दिन में कई आसुरों को मारते थे वो। मतलब ब्रेकफास्ट से पहले एक आसुर का हरिबोल हो ही जाता था, तब ये सब बच्चे फिर यमुना के किनारे जाते थे और प्रसाद लेते थे, और उन्होंने अपना पोटली बांध के मदर देते थे और सब प्रसाद लेते थे। तो इस प्रकार से अघासुर को उन्होंने मारा था और उसके बाद सबने कहा भी प्रसाद लेंगे हम, तो चाहे अघासुर, ये लोग प्रसाद के लिए बैठ गए। तो उस समय क्योंकि कोई भी किसी का प्रसाद खींचता था, कोई देखता था कृष्ण देखो मेरी माँ ने क्या दिया आप ले लो, तो सारे जो बच्चे थे उनका जो प्रेम का जो सेंटर थे वो कौन थे, कृष्ण थे, और कृष्ण बीच में बैठते थे और सब लोग राउंड करके कृष्ण को, और कृष्ण ऐसे लगता था कि कृष्ण मेरे मेरी ओर ही देख रहे हैं, मेरे साथ ही आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा हर बालक को महसूस होता था। तो ये सब आप शेयर करते थे सबसे पहले कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान उनके संग में थे और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते थे। तो भगवान अवतरित होने के कई कारण हैं, लेकिन उससे सबसे पहला महत्वपूर्ण कारण क्या है, वो अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। और एक कारण क्या है, वो ऐसी लीलाएं करना चाहते हैं जो आगे चल के किताबों के रूप में रिकॉर्ड हो जाए, ताकि उनके भक्त उन लीलाओं को गा सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं उनकी शिक्षाओं का। इसलिए कृष्ण आते था कि रिकॉर्डिंग करने के लिए, अपनी वीडियो शूटिंग। तो बुक्स में क्या है, वीडियो शूटिंग ही है, कहाँ पत्ते हिल रहे थे, कहाँ से पुष्प गिर रहे थे, कहाँ से फ्रूट्स, पानी कैसे बह रहा था। कृष्णा बुक में पढ़ते तो आपको क्या महसूस होता है, क्या बिल्कुल एक देख रहे हो अपने आंखों से। तो इस प्रकार से भगवान आते हैं, ये भी एक कारण है, और एक कारण है कि वो खुद आनंद का अनुभव करना चाहते हैं भक्तों के संग में। और भी है, परित्राणाय साधुनाम, प्रोटेक्ट करते हैं अपने भक्तों की रक्षा, और विनाशाय च दुष्कृताम। मैं यूपी में गया था कई स्थानों में, तो जहां भी गया वहां जो पुलिस स्टेशन है उसके ऊपर ये श्लोक हमेशा लिखा हुआ दिखाई दिया, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये सब कृष्ण का रोल अदा कर रहे, लेकिन ये उल्टा करते है पुलिस द्वारा, परित्राणाय दुष्कृताम और विनाशाय च साधुनाम, साधुओं का नाश करते हैं और इनका उद्धार करते हैं, रक्षा करते हैं आसुरों का। इस प्रकार से ये सब चीजों को यूज करते हैं भगवान के शब्दों को, भगवत गीता के, और दिखाते कि हम कितने सभ्य हैं। तो भगवान ने भी इस प्रकार से ये लीला की। तो कृष्ण के जब सारे फ्रेंड्स बैठे थे तो अचानक किसी ने कहा, अरे हमारे बछड़े कहाँ हैं, हाँ बछड़े बहुत दूर गए हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहे। तो किसी ने कहा नहीं मैं जाता हूँ अभी, ना मैं जाऊंगा ढूंढने। तो भगवान ने कहा नहीं, उन्होंने देखा अरे मेरे भक्त इतना आनंद ले रहे हैं, उनको मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, तो उन्होंने मैं खुद ही जाता हूँ। तो वर्णन आता है कृष्ण ने आचार इधर रखा था, रोटी ऐसा ऐसे, इसमें चार पांच प्रकार के आचार रखे थे हाथों में, और ऐसे लेके खाते जा रहे और ढूंढ रहे अपने बछड़ों का। अभी भगवान को किसी चीज को ढूंढने की थोड़ी आवश्यकता है, हाँ तो भगवान कहाँ है। तो लेकिन ये भगवान की एक विशेष लीला है, किसलिए कहते हैं कि भगवान को महान महान मुनिगण जो मन को हमेशा उद्वेलिक करते रहते हैं, मन से ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, स्क्रूटिनाइजिंगली स्टडी करके वगैरह वगैरह। तो कृष्ण कोई किताबों से ग्रंथों में बंधे हुए थोड़ी है कृष्ण। हाँ, कृष्ण तो अनलिमिटेड अनंत पर्सनालिटी है। ये तो हमारे जानकारी के लिए उनकी कुछ लीलाओं का वर्णन किया है। हाँ, लेकिन वो हम कोई सोचे कि नहीं इतने ग्रंथों को पढ़ के मैं पूरा जान जाऊंगा कृष्ण को, नहीं। ये तो एक एक, एक इतना छोटा सा कण भी नहीं है जो वर्णन कृष्ण का हमें मिलता है सारे वैदिक ग्रंथों में। तो भगवान अपनी लीलाओं से सबको भ्रमित करना चाहते हैं। तो फिर ऐसे जो जा रहे थे तो ये ब्रह्मा को लगा, ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा ये क्या हो रहा है, सब कह रहे भगवान है, तो ये बालक भगवान नहीं है। हाँ, तो मैं चेक करता हूँ ये भगवान है क्या। तो इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा ने उनके बछड़ों को चुराया और वहां एक पहाड़ के गुफा में जाके छुपा दिया, बछड़ों को भी दूर ले गए और इनको भी। फिर जब कृष्ण ढूंढने गए बछड़ों को तो फिर उन्होंने यहाँ क्या किया, जो बच्चे बैठे थे उनको भी चुरा लिया। तो और जब कृष्ण आते ना बछड़े ना ये, तो फिर ये चकित हो जाते, लेकिन कृष्ण समझ गए ये सब ब्रह्मा का काम है। तो फिर भगवान ने अपने ही रूप अपने से ही सब बछड़े स्वयं ही बने और बिल्कुल एग्जैक्टली जिस प्रकार से वेश धारण किया था उस बच्चे ने, जो भी चीज घर से लाई थी, जिस प्रकार से कोई भी चीज लाई होगी बच्चे ने उसका वेशभूषा, तो कृष्ण ने अपना विस्तार किया। हाँ, स्वयं विस्तार, वो किसमें, बछड़ों के रूप में, चाहे जो भी बगुल होते थे बजाने वाले उन सब चीजों में, और गोप सखाओं के रूप में भी विस्तार किया। और पूरे एक साल के लिए वो वृंदावन में रहे, क्योंकि ब्रह्मा का एक क्षण तो कई सालों के समान है। अभी ब्रह्मा ने एक क्षण के लिए वहां छुपाया था तो एक साल चला गया। तो कृष्ण ने सोचा कि मैं अभी क्या कहूंगा, ये सब लोग मुझे तो कहेंगे, मैं क्या कहूंगा कि बछड़े भी गुम हो गए और आपके बच्चे भी गुम हो गए। तो भगवान ने अपना विस्तार किया, क्योंकि वृंदावन के सब चाहते थे कृष्ण की, कृष्ण का संग चाहते थे। तो भगवान ने सबको अपना संग प्रदान किया, जो माताएं चाहती कृष्ण को बालक के रूप में चाहती थी। तो कृष्ण ने ऑलरेडी ये सब बच्चों के रूप में अपना विस्तार किया था, तो जो माताएं कृष्ण को अपने बालक के रूप में देखते थे तो कृष्ण ने उनका स्तनपान किया। जो गव्य चाहते थे कृष्ण हमारा स्तनपान करे, कृष्ण बछड़े बन के उनका स्तनपान किया। इस प्रकार से भगवान ने अपने सारे भक्तों को पूरा आनंद प्रदान किया, उनकी सारे इच्छाओं की पूर्ति की। तो जब ये हो गया तो फिर ब्रह्मा जब आए छुपा कर देखने, तो देखा ये तो वहां बछड़े भी हैं और बच्चे भी हैं, तो बड़े चकित हो गए कि ये कहां से ले। जब ब्रह्मा ने ठीक से देखा तो उनको सारे चतुर्भुज विष्णु फॉर्म, कृष्णा बुक में आप देखेंगे एक पिक्चर है, सारे विष्णु फॉर्म उनको दिखाई दिए। तो फिर ब्रह्मा को अपनी गलती पता चल गई और वह अपने हंस, ब्रह्मा जी का व्हीकल कौन सा है, हंस वाहन, हंस हंस के ऊपर आए और भगवान को प्रणाम करते हैं और क्षमा करते हैं। तो ये एक अद्भुत बात है ब्रह्मा जी के प्रणाम में, जैसे हम लोग प्रणाम करते हैं तो हम चरणों को ही देख सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी चार सर के है, प्रणाम करते तो ऊपर भी दिखाई देता है उनको भगवान का क्या फेस की प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि अभी एक सर नीचे किया तो दो इधर हैं, एक इधर और एक ऊपर। तो ये अद्भुत उनका प्रणाम का स्टाइल है। तो ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और उनको प्रार्थना ही की, क्योंकि उन्होंने ये अपराध किया था भगवान, तब उनको अनुभव हुआ कि ये भगवान है जो नॉर्मल रूप में लीला कर रहे हैं एक छोटे से गौ बाल के रूप में। तो फिर भगवान इन्होंने प्रार्थना की और मुझे क्षमा करे अपराध के। तब फिर ब्रह्मा ने कहा, जिसका वर्णन भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने नवदीप धाम महात्म्य में किया है, तो ब्रह्मा जी ने इस अपराध के खंडन के लिए उनसे क्षमा याचना की और उनको पता चला कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नवदीप में अवतरित होने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी नवदीप में आए कितने हजारों साल पहले, महाप्रभु अवतरित होने से पहले वहां ब्रह्मा जी आए और तपस्या करने लगे, और वो स्थान अंतर द्वीप है जहाँ चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो जब ये तपस्या कर रहे थे अपने इस अपराध का क्षमा के लिए भगवान से, तो भगवान गौरांग के रूप में प्रकट हो गए और कहा कि जे समये मम लीला प्रकट हैबे यवनेर ग्रहे तुमे जन्म लभिबे, कि जिस समय में अपनी लीलाएं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करूंगा उस समय तुम यवन के घर में जन्म लोगे। हाँ, एक मुस्लिम घर में तुम्हारा जन्म होगा। और आप अपना के ही न बलि है बेगेयान हरिदास हबे तुम्हें शून्य अभिमान। तो तब उमर स्थिति क्या होगी कि तुम अपने आप को इतना नीच अनुभव करोगे, हाँ, इतना अभिमान से शून्य हो जाओगे। हाँ, मतलब कोई आप मान सम्मान गर्व अभिमान इसका कोई आपके हृदय में लवलेश नहीं होगा, आप बहुत विनम्र हो जाओगे और अपने आप को बहुत नीच मानोगे। और फिर आप क्या करोगे, 3 लक्ष हरिनाम जिह्वाग्रे नाचिबे, और तुम रोज 3 लाख हरिनाम का उच्चारण करोगे, जिह्वा पे नाचने लगेगा हरिनाम तुम्हारे, 3 लाख नाम लोगे। हाँ, निर्यान समय तुम्हें आमा के देखिबे, और तुम जब अपने हरिदास ठाकुर के शरीर का त्याग करोगे जगन्नाथपुरी में, तो उस समय मेरा मुखमंडल देखते हुए तुम क्या करोगे, शरीर त्याग करोगे। महाप्रभु को ये शिक्षा है, पूरे हरिदास ठाकुर का चरित्र इतना अद्भुत है। तो इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु ने पहले से ही उनको इस बात को बता दिया था ब्रह्मा जी को, तो इसलिए हरिदास को एक नाम ये भी पुकारते ब्रह्म हरिदास। कई वैष्णव ब्रह्म हरिदास कहते हैं, क्योंकि वही ब्रह्मा जिन्होंने कृष्ण लीला में भगवान के प्रति ये प्रकार का अपराध किया था, तो भगवान ने उनको कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि हे कृष्ण ये पोजीशन आती है ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है ना, जैसे पद आता है व्यक्ति के पास तो सब कुछ भूल जाता है वो, किसी व्यक्ति को देखता नहीं आदर की भावना से और किसी भी प्रकार से वो ट्रीट करता है ना, घमंड आ जाता है पद का। ऐसे कई उदाहरण आते हैं हमारे शास्त्रों में। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे पद नहीं चाहिए, पोजीशन आती है तो फिर बहुत कठिन होता है आपके प्रति शरणागत होना, तो मुझे जरा निम्न निम्न इसमें शरीर में दीजिए और मैं आपकी भक्ति में लगा रहा हूँ। तो भगवान ने इस प्रकार से उनको ये शरीर प्रदान किया। तो इससे कई शिक्षा है कि हमारे पास पोजीशन आ जाती है, बड़ा पद आ जाता है, तो हमें कितना सावधान होना चाहिए किसी से भी डील करने में, व्यवहार करने में। तो ये ब्रह्मा जी कहते कि नहीं, अभी मुझे पद नहीं चाहिए, अभी तो मैं आपका बहुत हम्बल विनम्र सेवक बनना चाहता हूँ, मुझे किसी निच कुल में जन्म दीजिए। तो भगवान ने उनको इस यवन कुल में जन्म प्रदान किया हरिदास ठाकुर के रूप में। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त हुए कि हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, हरिदास ठाकुर का स्पर्श करने की इच्छा देवता करते थे। हाँ, क्योंकि भक्तों का स्पर्श करने से आप पवित्र हो जाते हो। तो ये भक्तों का स्पर्श कोई नॉर्मल चीज नहीं है, भक्तों के चरणों का स्पर्श करने से हम कितने अधिक भौतिक अटैचमेंट हमारे हृदय से खत्म हो जाती है। तो गंगा भी वेट करती थी, राह देखती थी कि कब हरिदास ठाकुर आएंगे और मेरे जल में स्नान करेंगे, ऐसा वर्णन आता है। तो ऐसे अद्भुत हरिदास ठाकुर थे। तो हरिदास ठाकुर का जन्म हुआ था 1451 में, बूढ़न नाम का एक गांव था, बांग्लादेश में आता है वो स्थान, यशोहर जिला में। तो इसके बारे में कई वर्णन आता है। तो ये एक ऑथराइज ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम विलास, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु का जीवन चरित्र है प्रेम विलास नामक ग्रंथ में। तो उस ग्रंथ में हरिदास ठाकुर के जीवन का वर्णन आता है। तो उसमें वर्णन आया है कि हरिदास ठाकुर मूलतः एक हिंदू परिवार में जन्म उन्होंने लिया था, लेकिन बचपन में ही उनके माता पिता ने शरीर छोड़ दिया, तो पड़ोसी जो मलय काजी नाम के जो मुस्लिम थे उन्होंने इनको पाला पोसा। तो लेकिन कई ग्रंथों में दूसरा एक ग्रंथ है अद्वैत आचार्य के ऊपर जो लिखा है, अद्वैत आचार्य का बायोग्राफी उस समय उनके संगियों ने, तो उसमें वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, ऐसे ऐसे। तो लेकिन मेनली यह है कि उन्होंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया था और मुस्लिम जो व्यक्ति हैं परिवार जो मलय काजी नाम के उन्होंने इनका पालन पोषण किया। तो हरिदास ठाकुर के बचपन के बारे में कुछ ऐसी घटनाएं हमें नहीं मिलती हैं और जो भी मेनली इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वृंदावन दास ठाकुर और कृष्णदास कविराज के चैतन्य चरितामृत में, वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत में, तो हरिदास ठाकुर जो जैसे थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उनके हृदय में एक विरक्ति का भावना हमेशा रहती थी और स्वाभाविक रूप से बचपन से ही उनके जिह्वा में केवल कृष्ण नाम निकलता था। कृष्ण के नाम के अलावा कोई चीज हरिदास ठाकुर के जिह्वा से निकलती नहीं थी और हरिदास ठाकुर को किसी और ऐसे व्यक्ति का संग भी अच्छा नहीं लगता था जो कृष्ण के नामों का कीर्तन ना करते हो। तो हरिदास ठाकुर रोज जब वो अपने उस स्थान में थे बुड़न ग्राम में, तो वहां से वो अकेले ही बेनापुल नाम के एक स्थान में आते हैं जो एक बांग्लादेश में आता है वो सब स्थान। तो हमारे गौड़ीय वैष्णव के जो भी लीला स्थलीय हैं, महान महान भक्तों ने जहां जहां जन्म लिया है वो आजकल ज्यादातर बांग्लादेश में है और बहुत बांग्लादेश में तो बहुत ज्यादा है, नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे कई सारे वैष्णव का। तो हरिदास ठाकुर का भी भारत और बांग्लादेश के मतलब बॉर्डर में ही है, लेकिन वो जो भाग है वो बांग्लादेश में ही पड़ता है। तो आज भी कई सारे वैष्णव जाते हैं उस स्थान में दर्शन करने के लिए, हरिदास ठाकुर की कई सारी लीलाएं वहां हुई हैं। तो जो बेनापोल नाम का स्थान था वहां हरिदास ठाकुर आए अपना घर छोड़ के अकेले, और उन्होंने फिर एक जो गांव के पास ही छोटा सा जंगल था उसमें अपना निवास स्थान बना लिया। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और वहां उस झोपड़ी के सामने उन्होंने तुलसी महारानी को रखा। तुलसी बनाते हैं गांव में, तुलसी रखते हैं, और रोज उन्होंने व्रत लिया कि मैं रोज हरि नाम का 300,000 नामों का जप करूंगा, मतलब 192 राउंड्स। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। भक्ति सिद्धांत महाराज अपने शिष्यों को तो कहा करते थे कि 64 मालाओं का जप करना चाहिए, 64 माला मीन्स 100,000 नाम ना, तो ऐसे 300,000 नाम। तो इन्होंने भी, भक्ति सिद्धांत महाराज ने भी मायापुर में व्रत लिया था जो करते थे 300,000 नाम या ऐसे कुछ करते थे। तो हरिदास ठाकुर रोज ये 300,000 नामों का उच्चारण करते थे और ग्रंथों में वर्णन आता है कि 100,000 नाम वो मन से जप करते थे, 100,000 नाम वो मरमरिंग चैंटिंग जो हम करते हैं अभी खुद को जो सुनाई दे इस प्रकार से, और 100,000 नाम उच्च स्वर से कीर्तन लाउडली चैंटिंग। तो इस प्रकार से हरि नाम, हरिदास ठाकुर का जो जीवन है वो केवल हरि नाम के प्रति ही ये था, सेंटर्ड था। तो हरिदास ठाकुर ने जब बेनापोल में आए तो उन्होंने एक निर्जन वन में स्थान लिया जहां तुलसी की सेवा करते थे और रात्रि दिन केवल कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे और 300,000 नाम हरि नाम संकीर्तन करते थे। और उनको अपने कोई खान पान की चिंता नहीं थी, ऐसे नहीं कि रोज कोई फिस्ट हो रहा है तो वहां वो भाग रहे थे अपना प्लेट लेके, क्योंकि आजकल के साधुओं का स्थिति क्या है, चाहे आप जहां भी जाओ हरिद्वार में तो विशेष रूप से देखने को मिलता है कि साधुगण पूरा दिन अपना बिताते हैं फिस्ट कलेक्ट करने में और शाम का खाने में, बस ऐसा जीवन बीतता है। तो वहां तो कई सारे धनवान लोग जाते हैं क्योंकि वहाँ हरिद्वार के उस एरिया में लोग तो अपना साधुगण अपना अपना कुटिया बना के रहते हैं और कई दिल्ली से कई स्थानों से लोग जाते हैं और भंडारा करते हैं वहाँ और बांटते फ्री। तो साधु लोग अपने अपने तीन तीन प्लेटें रखते हैं, डब्बा प्लेटें, और साधु बस आज उनको पहले से पता चलता है, इन्फॉर्मेशन हाईलाइटेड न्यूज होती है पूरी वहाँ कि आज कहाँ कहाँ भंडारा होने वाला है। तो सब जगह जाके पूरा कलेक्ट करते और फिर खाते रहते दिन भर शाम आराम से। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन है केवल अन्न को कलेक्ट करने में नहीं व्यतीत होना चाहिए। हाँ, तो हरिदास ठाकुर ऐसा करते तो उनसे 3 लाख नाम जप नहीं होता। क्योंकि एक्चुअली यदि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति हम फुल्ली ऑब्जर्व हो जाते हैं, उनको सुनने में, उनकी चर्चा करने में, उनको मनन करने में यदि हमारा रुचि बढ़ता है, तो स्वाभाविक रूप से जो ये भूख है, प्यास है और जो भी हैंकरिंग है, शरीर की नेसेसिटीज है, उनमें क्या होगा, कमतरता होगी। हाँ, स्वाभाविक रूप से, क्योंकि आत्मा का इतना पोषण होता है कि शरीर में वो शक्ति आ जाती है और वो स्वाभाविक रूप से कम खाके भी चल जाता है, कम सोके भी। जैसे हम गोस्वामियों के बारे में सुनते हैं, निद्रा आहार विहार कादि विजितो, कि जिन्होंने निद्रा आहार को विजय कर लिया था, निद्रा आहार इन सबको विजय, और वो दो दो ढाई घंटे सोते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी 2000 प्रणाम करते थे वैष्णवों को, भगवान को 1000, और एक छोटा सा छास, एक द्रोणा जो आपको महाप्रसाद मिलता है उतना खाके पूरा जीवन। तो एक द्रोणा होता था छोटा सा, जिसमें वो छास होता है ना दही का ठंड में, गर्मियों में, बटर मिल्क उतना पी के रह जाते थे, ऐसे थे। क्यों, कैसे ये संभव था? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी रोज अलग अलग वृक्षों के नीचे रहते थे और उनका वर्णन आता है वो कितना खाते थे चैतन्य चरितामृत में। तो ये क्यों रह हो जाता था? क्योंकि वो शरीर से परे हो गए थे और उनका जो पूरी जो चेतना है वो कृष्ण में इतनी ऑब्जर्व हो गई थी कि शारीरिक जो नेसेसिटी है उसकी कोई मतलब कमतरता महसूस नहीं होती थी। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज ने जब सुना शुकदेव गोस्वामी लेक्चर दे रहे थे भागवतम का, तो उन्होंने जब लेक्चर दिया कालिया लीला का, तो फिर इनको कोई भूख प्यास नहीं लगी। नहीं तो हम 10 बार उठ उठ के जाते हैं पानी पीने के लिए, या फिर पता नहीं जब में भी मैं पर्सनली अनुभव करता हूँ, या तो प्यास लगेगी या फिर नींद आएगी। क्यों? क्योंकि ना अनुराग। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, कौन सा है शिक्षाष्ट का श्लोक बोलिए एक साथ,
नाम नामकारी बहुदानि
सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुराग। हे कृष्ण, देखो कितना बड़ा दुर्दैवी हूँ मैं, न अनुराग। वो कहते अनुराग नहीं है, चैतन्य महाप्रभु कहते। तो ये अनुराग न होने के कारण फिर बाकी चीजों में हमारा बहुत अधिक अनुराग होता है। तो प्रभुपाद भी ऐसे थे, प्रभुपाद का भी जो अनुराग है इतना गहन था। प्रभुपाद भी बहुत कम सोते थे, हम प्रभुपाद उठ जाते थे 11-12 बजे उठ जाते थे रात को, और पूरा 4 बजे तक वो अपने भागवतम और उनका ट्रांसलेट करते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन था। तो हरिदास ठाकुर भी अपना जो ज्यादा समय है भगवान के नाम कीर्तन में लगाते थे, नाम का उच्चारण करने में। क्योंकि नाम का आश्रय लेते हैं, नामे प्रस्फुटित है रूप गुण उनकी क्रियाएं। तो नाम में क्या है, सब चीजें भरी हुई हैं। नाम आप अच्छे से चांत करते हो तो स्वाभाविक रूप से भगवान के रूप जो है वो प्रकट होगा और उनके गुण आपको आसक्ति बढ़ेगी, फिर उनके दिव्य कार्यकलापों के बारे में आप जानोगे। तो ये नाम बहुत आवश्यक है, ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा है कुछ लीलाएं पढ़ता हूँ, कई बार भक्त लोग भावुक हो जाते हैं। तो लेकिन नाम का आश्रय लेते हैं, हरि नाम को अच्छी तरह से हम शेल्टर ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, उसको ये करते हैं हरि नाम कवच। जैसे कई लोग कई कवच पहनते हैं, नरसिम्हा कवच है ना, मायापुर जो भी जाता है वो अपने साथ नरसिम्हा कवच ले आता है, भगवान नरसिम्हा भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम और कई कई कवच इकट्ठा करते हैं और हरिनाम कवच हाथ में होता है रोज उसको छोड़ देते हैं। हाँ, तो हरिनाम कवच बहुत शक्तिशाली है, तो हरिनाम कवच को इतना हमें पकड़ लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने इतना इस हरिनाम का सहारा लिया था, तो हमें भी हरिनाम का सहारा लेना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से भगवान के गुण, भगवान के रूप, भगवान के कार्यकलाप आपको प्रस्फुटित हो जाएंगे। भक्तिनो ठाकुर कहते आप अनुभव करोगे, हाँ स्वाभाविक हो जाएगा। तो ये हरिदास ठाकुर जब वहाँ इस प्रकार से निवास करते थे, तो अपने उदर निर्वाह के लिए ऐसे नहीं कि फोन करके वो प्रसाद मांगते थे, या फिर वहाँ कोई गोविंदा स्नैक्स भी था, हाँ या कोई केशवहरी प्रभु थे जो उनके लिए मैक्रोनी बना के रखते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बल्कि हमें तो हमें शर्म आनी चाहिए हमें, मतलब देखो कृष्ण ने हमें उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए कितना व्यवस्था किया है। हाँ, देखो अभी फैन की हवा आ रही है, पूरा एकांत में भगवान के बारे में सुनने को पढ़ने में, दिल्ली जैसे ऐसे शहर में हाँ जहाँ लोग बाहर धूप कैसी चल रही है, आज या कल ओडिशा में धूप के कारण 40 लोग मरे कल, हाँ धूप हिट इतनी वेव लू जैसे, तो हमें तो ऐसा है नहीं। तो ये कृष्ण की इतनी कृपा है, कृष्ण चाहते कि बस कोई और चिंता मत करो, मेरा चिंतन करो, बड़े सावधानी से और ये सारी सुविधा दे दी है हमें। तो हम इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बहुत गंभीरता से जो नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, इन सब चीजों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने तो कोई अपने खान पान की व्यवस्था के बारे में सोचा नहीं, लेकिन बीच बीच में वो ब्राह्मणों के घर जाते थे, उनसे भिक्षा मांगते थे खाने के लिए भिक्षा। ये कोई भिक्षा मांगना कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जैसे आप किसी से कुछ मांगते हो तो वह विनम्रता ह्यूमिलिटी प्रदर्शित होती है। बेगर, बेगर को कोई अहंकार होता तो अहंकार होता है क्या, बेगर को गर्वित होता है कि देखो, लेकिन आजकल होता है जो बेगर से बाहर, और हम पढ़ते हैं लिखते हैं तो हम भी बड़े बड़े बेगर हैं जो इतना डिग्रियां प्राप्त करके कई सारे दफ्तरों के ऑफिसों में के दरवाजे में जाते और भीख मांगते। प्रभुपाद कहा करते थे, जितना से पढ़ने के बाद हमारे से तो कुत्ते के समान है, कुत्ता हर बार घर का दरवाजा चेंज करता है, जाता है एक टुकड़े के लिए, और जब भी हम डिग्रियां ले जाते हैं कागज दिखाते, ये रहा मेरा अचीवमेंट और मुझे कुत्ते के समान आपके यहाँ रखो, ये सिचुएशन है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर प्रसाद ग्रहण करने के लिए ब्राह्मणों से मांगते थे, और जो भी मिले ऐसे नहीं कि नमक नहीं आज इस रोटी में, ऐसा क्यों है, वो कोई कंप्लेंट नहीं होता था उनको। तो एक्चुअली शुद्ध भक्ति का प्रैक्टिस है कि भगवान की कृपा से जो भी हमें मिल रहा है उसको हम स्वीकार करें उनकी ओर आगे बढ़ने के लिए। जैसे सनातन गोस्वामी का आप सुनते हैं, रूप गोस्वामी, उनको वृंदावन में जो भी चीजें मिलती थी वो स्वीकार कर लेते थे, और उनके मदन मोहन विग्रह थे सनातन गोस्वामी के। तो लेकिन कृष्ण ने कहा, अरे तुम मुझे बिना नमक का रोज खिलाते हो, आज नमक दे दो। तो उन्होंने कहा, नहीं आज तुम नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे। हाँ, तो इस प्रकार से जो भी भगवान की कृपा से हम मिले उसमें हम खुश। हाँ, लेकिन हमारा मेन गोल क्या है, भगवान की ओर आगे बढ़ना और जोर से हरि नाम लेना,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इस प्रकार से इतने विनम्र होते हुए हैं, क्योंकि हरि नाम वही कर सकता है जिसमें ये चीजें हो, चार, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो हरिदास ठाकुर का चरित्र, इस उनका जो जीवन शैली है, इस श्लोक पर आधारित थी, क्योंकि हर समय हम नहीं ले पाते नाम। हाँ, क्योंकि ये गुण चाहिए, कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु ने कहा हरि के सदा कीर्तन करना है तो आपको तृणादपि सुनिचेन तरोरपि, तृणादपि सुनिचेन, ऐसे नहीं कि ऊपर, सुनी सु भी वर्ड इनके, सु पूरा नीचे, तृणादपि सुनिचेना, जैसे तृण के ऊपर हम पांव देते हैं। कभी आप सोचते हो घास में चलते हुए, कभी विचार नहीं आता हाँ कि ये बेचारे घास के ऊपर मैं चल रहा हूँ, क्या उसकी स्थिति हो रही होगी, मैं 80 किलो का हूँ या 40 किलो का हूँ। तो लेकिन वो इतना विनम्र है, विनम्र सिर ऊपर, जैसे आप पाव दे के चले जाएगा फिर अपनी नॉर्मल स्थिति में रहता, इतनी विनम्रता। ऋणादपि सुनी छे न तरोरिव सहिष्णुना तरोरि, महाप्रभु ने श्लोक को तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे के चैतन्य चरितामृत में सुनाया है। तरोरिव सहिष्णुना, तरोरिव मीन्स वृक्ष के समान सहलशील, काटी ले किछु ना बोला है। महाप्रभु कहते हैं वृक्ष को काटोगे कंप्लेन करता है किसी के पास नहीं करता, कितनी चीजें सीख सकते हैं। तृणादपि सुनिश्चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन, एक तो अमानी होना मतलब मान की अभिलाषा नहीं करना, और चाहे कोई हमारा अपमान करता है उसको भी, उसके लिए भी हमें माला लेके खड़ा होना, थैंक यू आप इतना एक क्या मेरे लिए। तो अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, तो ये भावना होगी तभी कृष्ण नाम हमारे मुख से या कृष्ण नाम के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जैसे प्रभुपाद अमेरिका नहीं गए थे तो वो वृंदावन में रहते थे, तो प्रभुपाद के एक गॉड ब्रदर थे जिनका नाम था ओबीएल कपूर, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य। तो प्रभुपाद कई बार उनको अपने जब गृहस्थ जीवन में भी थे या फिर जब आए थे वृंदावन में तो मिले, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद को कि स्वामी जी, उनके गॉड ब्रदर ही थे, गुरु भाई थे, दोनों एक ही भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। उन्होंने कहा कि अभय चरण आपने तो इतनी दवाइयां बनाते हैं बनाई हैं, उनका प्रभुपाद दवाइयां बनाते थे, अब लीलामृत में पढ़ेंगे ना, उनकी डेज का पेन किलर और काफी काफी चीजें बनाई थी, प्रभुपाद बहुत एक्सपर्ट थे। आप प्रभुपाद नेक्टर पढ़ेंगे, जो प्रभुपाद नेक्टर बुक है या प्रभुपाद लीलामृत में भी आता है, प्रभुपाद खुद ही दवाइयां बता देते थे भक्तों को क्या करना है बेसिक। तो जब उन्होंने उनके गुरु भाई ने पूछा कि अभय चरण आपने कोई ऐसी दवाई टैबलेट बनाई है क्या जो खाते ही कृष्ण प्रेम उदित हो जाए, तो उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं बनाई लेकिन फॉर्मूला मेरे पास है। प्रभुपाद ने कहा तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा क्या फॉर्मूला है, तो प्रभुपाद ने कहा तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना, एक साथ फिर से तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना सदा। तो ये फॉर्मूला है प्रभुपाद ने कहा कृष्ण प्रेम जागृत करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर इस प्रकार से अपना उदर निर्वाह करते थे, तो उनका इस प्रकार से हरिनाम में इतना आकर्षण था कि वो सारे एरिया में बिना बोल के वो बहुत अधिक फेमस हो गए, इतना फेमस हो गए कि हर कोई उनका गुणगान करने लगा, उनकी चर्चा करने लगा, उनको आदर देने लगा, कई लोग स्वाभाविक रूप से प्रसाद ले जाते थे उनके लिए। तो हमें यदि हम कृष्ण के नामों का आश्रय लेते हैं तो फिर ये बाकी चीजों की चर्चा नहीं, बाकी चीजों के पीछे नहीं हमें भागना पड़ता, वो चीजें हमारे पीछे भागती हैं। हम सुनते हैं बिल मंगल ठाकुर, वो कहते हैं कि मुक्ति मुक्तांजलि, मतलब मुक्ति जो है हाथ जोड़ के मेरे दरवाजे के गेट में खड़ी रहती है कि आओ और मुझे स्वीकार करो, मतलब फैसिलिटीज, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वो, मुझे तो कहते आपके नामों का आश्रय चाहिए, भगवान के नाम। बिल मंगल ठाकुर जो महान भक्त हुए हैं, जो एक वेश्या के प्रति आसक्त थे, उस वेश्या ने, वो वेश्या उनके शिक्षा गुरु है, चैतन्य चरितामृत में वो श्लोक दाया है, चिंतामणि उसका नाम था, वो शिक्षा गुरुओं का जो वर्णन करते हैं चाहे कृष्णदास कविराज, तो उस वेश्या का वर्णन करते हैं। तो बिल मंगल ठाकुर ने जो ग्रंथ लिखा उसमें अपने इस वेश्या को सबसे पहले प्रणाम कर रहे हैं कि ये शिक्षा गुरु है। इस प्रकार से कितने फेमस हो गए कि हर कोई उनकी चर्चा करने लगा, और फिर कोई फेमस हो जाता है तो हमें फेमस होना है तो किस रूप में, भगवान के भक्त के रूप में, यदि अभिलाषा है कि मुझे बहुत बड़ा चाहिए, फेम चाहिए, तो ठीक है, इस रूप में आप हो जाओगे फेमस, हाँ फिर शुद्ध भी हो जाओगे, क्योंकि भगवान का भक्त नहीं चाहता अपना फेम। माधवेंद्रपुरी के जीवन से सीखते हैं, उनके लिए खीर की चोरी की थी गोपीनाथ ने, तो वो नहीं चाहते थे कि सब लोग मेरा गुणगान करें कि मेरे लिए खीर चोरी की है। तो हरिदास ठाकुर का इतना गुणगान हो रहा था कि नेचुरल है, किसी का गुणगान हो तो कोई उनसे ईर्षा जरूर करेगा, द्वेष करेगा, उसको नींद नहीं आएगी, उसका ही क्यों गुणगान हो रहा है, मैं क्या कम करता हूँ। जैसे कई बार एक गुरु के दो शिष्य होते हैं और वो गुरु किसी की स्तुति करते तो वो तुरंत चिल्लाता है, गुरुदेव मेरे कार्यों को नहीं देख रहे आप, मैं क्या कम ये करता हूँ। जैसे दुर्योधन में ये था, ये सब लोग हमेशा पांडव पांडव करते रहते थे, दुर्योधन के पितामह भीष्म को कहते थे, द्रोणाचार्य को कहते थे, कृपाचार्य को, इन सबको कहते थे। इस प्रकार से ईर्ष्या रहेगी संसार में, और जो भक्तों से ईर्ष्या करेगा उसका आध्यात्मिक जीवन खत्म हो जाएगा। तो बेनापुल में ऐसा है, एक मुलुकपति मतलब लीडर था उसका स्थान का, जिसका नाम था रामचंद्र खान। रामचंद्र खान देखो, राम का नाम और खान भी है, रामचंद्र खान। रामचंद्र खान के हृदय में इतनी ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी, क्योंकि जब हमारे हृदय में ईर्ष्या आ जाती है तो बहुत कठिन होता है किसी का गुणगान हमें सुनना, अनटॉलरेबल। हाँ, तो इसलिए ये जो एनवी है, क्योंकि जो छह चीजें हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मात्सर्य मीन्स एनवी, तो ये बाकी जो पांच चीजें हैं आप कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर सकते हो। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, कहते हैं काम कृष्णार्पणे, काम, काम मीन्स डिजायर, जैसे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने की डिजायर है तो क्या करो, इसको आप प्यूरिफाई कर सकते हो, वही चीजें बनाओ लेकिन सबसे पहले भगवान का अर्पण करो, फिर खाओ, शुद्ध होते जाओगे। तो काम कृष्णार्पणे, लोभ साधु संगे हरि कथा, आपके हृदय में ग्रीड है, लोभ है, तो किस चीज के लिए रखो, साधुओं का संग करने के लिए, हरि कथा को सुनने के लिए, लोभ साधु संगे हरि कथा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, और क्रोध करना ही है तो किन के ऊपर करो, भक्तों का जो द्वेष करता है ना, कि भक्तों के ऊपर क्रोध करो, भक्तों के ऊपर क्रोध करना मीन्स वैष्णव अपराध। तो जो भक्तों से क्रोध, भक्तों का द्वेष करते हैं, भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करो। प्रभुपाद उपदेश अमृत में लिखते हैं, दो उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन, अर्जुन ने भी क्रोध किया भगवान के कहने पर, क्योंकि सारे कौरव भक्तों के भगवान के द्वेषी थे, और फिर प्रभुपाद हमेशा एक उदाहरण बोलते थे, क्रोध भक्त द्वेषी। हनुमान कहते, हनुमान ने इतना क्रोध किया पूरे लंका को जला दिया, कितना। इस प्रकार से जो भक्त, इस प्रकार से जो छह रिपु कहा जाता है, रिपु संस्कृत में मीन शत्रु, जो भक्ति में जीवन के लिए ये छह शत्रु हैं, इनको छह से पांच को आप भगवान की सेवा में लगा सकते हो, लेकिन ईर्ष्या को नहीं। ईर्ष्या को खुद ही अनुभव करके ढूंढ के उसको निकाल के फेंक देना होगा बाहर, खुद ही। ईर्ष्या जाएगी कैसे, जिनसे हमें ईर्ष्या होती है उनका सेवा करने का प्रयास करो, उनको कुछ न किसी न किसी प्रकार से सर्व करो, उनका गुणगान करो। इस प्रकार से जो एनवी है, और एनवी होगी तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए प्रभुपाद कहते हैं इस सोसाइटी में स्थान नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं वैष्णव समाज निर्मत्सरानाम सताम, जो एनवी से रहित व्यक्ति है उनके लिए वैष्णव समाज है, क्योंकि वैष्णव समाज में किसी एनवियस व्यक्ति को स्थान नहीं है, आज ना कल वो वैष्णव समाज से चला जाएगा। तो इसलिए अभी से हमें सोचना चाहिए जो एनवी है वो है जिन वैष्णव के प्रति हमें, जैसे एनवी होती है तो हम सुनते नहीं है, जैसे किसी का प्रवचन है उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या एनवी है, हम कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, नहीं आज मैं बीमार हो गया या फिर कुछ हो गया कि नहीं, तो सुनना नहीं कृष्ण के बारे में मीन्स वो एन्वी का लक्षण है, शास्त्र कहते प्राइड। हाँ, कोई कहता है ये क्या लेक्चर देगा, इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्राइड और एन्वी का लक्षण है, क्योंकि शिष्य का मतलब जो सुनता है वही शिष्य है, जो सुनता नहीं वो शिष्य नहीं है। हाँ, तो ये शिष्य का पहला क्वालिटी है। हाँ, क्या कि वो सुनता है, अभी सुनेगा नहीं तो वो शिष्य कैसे होगा, वो सबमिसिव कैसे होगा। तो इसलिए ये चीजें वहां भी ऐसे ही एक पर्सनैलिटी थी रामचंद्र खान। हाँ, तो फिर उनके हृदय में ऐसी तीव्र ईर्ष्या हो आई, वो लैंड होल्डर थे वहां, लैंड ओनर होल्डर जो भी उस एरिया के मालिक थे, तो इतने द्वेष, इतना द्वेष उनके हृदय में आया कि हरिदास से लोक पूजे सहित ना पारे, तार अपमान करे ते नाना उपाय करे। क्योंकि किसी से ईर्ष्या और द्वेष होती है ना, तो हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे जिससे उसको नीचा कैसे दिखाऊं, ये भावना हमारे हृदय में रहेगी। तो ये हरिदास ठाकुर को नीचा कैसे रखे, इसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो फिर उन्होंने एक उपाय ढूंढा, क्योंकि साधु को नीचे करना है मीन्स उसका पतन हो जाना चाहिए। हाँ, मतलब कोई जैसे पतन करना है तो फिर कोई स्त्री चाहिए। तो इन्होंने कई वेश्याओं को पास गए, उनका मीटिंग बुलवाया, कहा कि ऐसे ऐसे एक महात्मा है, हरिदास जी है, जिनको आप में से कोई उनका पतन करो, उनको गिरा दो उनके स्थिति से। तो फिर उसमें एक वेश्या थी जिसका नाम था लक्ष्य हीरा। इस लक्ष्य हीरा ने कहा, और वो सबसे सुंदर वेश्या थी, उसने कहा कि मैं लूंगी ये सेवा, ये सेवा मैं करूंगी, किसका, हरिदास ठाकुर को गिराने की। तो फिर उन्होंने कहा कि आप तुम्ही सब कर जहार वैराग्य धर्मनाश, कि आप जाओ और इसके वैराग्य धर्म का नाश करो, विरक्ति का, इसको गिराओ उसकी स्थिति से। तो फिर ये जो लक्ष्य हीरा नामक जो वेश्या है वो इस बात पर तैयार हो जाती है और उसको कई सारा धन देता है, और वो जाती है। और हरिदास ठाकुर एक छोटे से हिल सा था और थोड़ा जंगल सा था, वहाँ अपना एकांत में हरि नाम लेते थे। तो ये वेश्या ने इतने सुंदर वस्त्र अलंकरण सेंट्स वगैरह धारण किए थे, चैतन्य चरितामृत में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज इस लीला का। तो जब ये वेश्या जाती है तो हरिदास ठाकुर तो बस बैठे ही हैं, उनका ध्यान ही नहीं है। हमारा चांटिंग तो रडार चांटिंग होता है, रडार देखा होता है, कहाँ वो ऐसे यहाँ दिखेगा, घूमते रहेगा, उसका फेस ही है रडार का, ऐसे ही फेस है, इधर 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 ऐसे घूमते रहता है। तो हमारा भी हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे कृष्ण ऐसा रडार हमारा घूमते रहता है पूरे 5:30 से 7:15 तक। हाँ, तो उनका कोई रडार चांटिंग नहीं था और ना उनका वेल मछली चांटिंग था। एक वेल मछली चांटिंग होता है, एक प्रकार है चांटिंग का, जिसमें क्या करता है भक्त, वेल मछली जैसे हम वेल या डॉल्फिन जैसा होता है ना मछली, जैसे हम वहाँ थे मायापुर में, तो कभी कभी गंगा नदी में जब नवदीप से इधर उधर जाता था या कहा, तो कभी कभी दिखता था वो डॉल्फिन आता था बाहर ऐसे। तो वो डॉल्फिन क्या है, ऊपर आना फिर नीचे जाना, ऊपर आना नीचे जाना। आप देखो चिल्का लेक है वहाँ जगन्नाथपुरी के, वहाँ चिल्का लेक, तो वहाँ भी बहुत डॉल्फिन लोग देखने जाते हैं। तो हम भी चांटिंग में कैसे हम जाते हैं, फिर नीचे फिर ऊपर नीचे, इस प्रकार से बहुत लोगों ने कई सारे चांटिंग के जो प्रकार है वो ढूंढ के निकाले हैं और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं भक्तों के देखने की जो शैली है बहुत शार्प है, कई शिक्षा निकालते हैं। तो हरिदास ठाकुर का ऐसे नहीं चल रहा था, और हरिदास ठाकुर बैठे थे और बस कृष्ण का नाम लेते जा रहे थे, क्योंकि इतना स्वीट है कृष्ण का नाम कि हरिदास ठाकुर अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे। इतना स्वीट नेक्टर, किसी चीज हम बहुत टेस्टी है तो वह डालते जाते स्टॉप ही नहीं होता जब तक फाइनल अलार्म नहीं बजता कि नहीं बस। प्रभुपाद ने कहा कि जब नए नए भक्त ज्वाइन करते थे तो प्रभुपाद का ये टीचिंग था कि सबको कहाँ तक खिलाओ, कंठ भर के यहाँ तक, मतलब भक्त छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो जाना चाहिए इसको शुरुआत के दिनों में, क्योंकि शुरुआत के डेज हमें कृष्ण भक्ति तो रोकती नहीं है यहाँ, हमें तो बाकी चीजें रोकती हैं, प्रसाद रोक के रखता है और क्या रोक के रखता है, कीर्तन रोक के रखता है भक्तों के संग में, और
फैसिलिटीज
और
जॉब नहीं करना पड़ता
है जॉब नहीं करना पड़ता, बॉस करने सुना, कितनी चीजें यहाँ नाइस वंडरफुल लाइफ है ये ब्रह्मचारी जीवन। एक्चुअली ब्रह्मचारी जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है, सुबह उठता है हाँ, उठते नाचते नाचते बाथरूम में चला जाता है, गाते रहता है, सुबह व्यक्ति नॉर्मल लाइफ में गाना तो भूल ही जाओ, रोते हुए उठता है और ऑफिस का चिंतन करता है और फिर उसको दो घंटा जर्नी करता है करना होता है ऑफिस, जैसे मुंबई शहर में आप देखो इतना ट्रेन कितना भरा रहता है, भयानक, लोग मरते, इतना रश में जाना तो जाना आना, इतना तपस्या, कुछ महीने में रहा मुंबई में अपने भक्ति लाइफ से पहले तो ट्रेन से जाना पड़ता था, इतना कष्टमय, मतलब तो आप अभी खड़े हो जाओ और बस आपका बिल्कुल चपाती हो जाएगा और आप अंदर चले जाओगे, अंदर तो इतने सांस सबके जो सांस है वो आपको लेने पड़ेंगे जो, तो ऐसा लाइफ है। यहाँ ब्रह्मचारी उठता है हरी बोल और कोई बाहर मिलता भी वो भी हरी बोल करता है, तो नाचते हुए बाथरूम करके जाता है ऊपर, ऊपर जाके भी क्या करता है, दर्शन करता है, नाचते रहता है वहां जाके, सुबह से ही नाचना गाना, तो नाचना और गाना किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, आनंद को रिप्रेजेंट करता है, ये व्यक्ति आनंदित है, तो ऐसे जीवन यापन करते हैं। और फिर थोड़ा सा कुछ रुका, दर्शनार्थी, गुरु पूजा, भगवत कथा सुना, फिर प्लेट लेके बजाते हुए प्रसाद मॉल में हरी बाबल प्रसाद, तो फिर रोज ही, तो अभी हफ्ते में तो 3 दिन फेस्ट ही होता है हमारे जीवन में, तो हमने ये नाम भी सुने नहीं होंगे, इतने वैरायटीज होती है जूस, ये बेल जूस तो नाम पता ही नहीं था भक्तों को हा? ये तो मायापुर में आप जाते हो तो बेल जूस दिखता है, पहले दिल्ली में नहीं था। तो इस प्रकार से, और हमें ये नहीं करना पड़ता कि आज आलू का रेट क्या चल रहा है, फिर टमाटर का क्या भाव है, और पूछा आपने कभी जब से आए हो तब से पूछा है नहीं? हाँ आप देखो तो कई कांग्रेगेशन के लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि आपके भक्त बड़े इसमें हैं, नाचते गाते और बस कुछ नहीं, सीधा प्लेट लेके प्रसाद हॉल में पहुंचते हैं, कोई चिंता नहीं है, तो उनको कितना सीरियस होना चाहिए कृष्ण भक्ति में। ये ब्रह्मचारी लाइफ एक प्रकार से बहुत आनंदमय है, भक्तों के संग में हम रह के इसको बिताते हैं, किसी चीज की चिंता नहीं है, कृष्ण का चिंतन करो, गुरु के इंस्ट्रक्शन का चिंतन करते हुए कृष्ण की सेवा करो। तो जैसे हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे थे तो ये वेश्या आके पहुंच गई, वेश्या पहुंचती है और तो इन्होंने कहा कि आप जाते ही उसका पतन कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बार मैं उस हरिदास ठाकुर के साथ संग करूंगी, तो फिर आप अपनी सेना को भेजो और फिर उसको हम सबके सामने ये करेंगे, क्या कह सकते हैं, दलील कोई वर्ड है मुझे बताने, इस प्रकार से उसको हम नीचा दिखाएंगे। तो इस प्रकार से ये जाती है बहुत अधिक सज धज के, और हरिदास ठाकुर तो केवल अपने नाम उच्चारण में मग्न थे, किसी और चीज का उनको स्मरण नहीं था, और उन्होंने ठीक से देखा भी नहीं कि वो माता जी आई है, तो वो केवल अपने नाम चांटिंग में लगे हुए हैं। तो वो कहती हैं, ठाकुर तुम्हें परम सुंदर प्रथम यवान, तुम्हा देखी कोन नारी धरिते पारे मान, अरे ठाकुर नाम लेके ठाकुर, अभी हरिदास ठाकुर है, उन्होंने कहा ठाकुर कि आप तो प्रथम यवन में हो, मतलब हरिदास भक्त तो और सुंदर होता है, नाम का आश्रय ग्रहण करता है, और ये महान वैष्णव कितने सुंदर होंगे हरिदास ठाकुर, जिनकी सुंदरता का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने भी किया है और कृष्णदास कविराज ने भी किया है, तो इतने सुंदर थे हरिदास ठाकुर। उन्होंने कहा कि आप इतने यवन हो, युवा हो, कि कौन ऐसी स्त्री है जो अपने मन को कंट्रोल कर सकती है आपको देखकर, ऐसे ऐसी वो बातें बोल रहे थे। तुम्हारा संगम लागी लुब्ध मोर मान, तुम ना पाएले प्राण ना जाए धरन, और आपके साथ संग करने के लिए मेरा मन हर समय लालायित है, अब वो भाग रहा है, और यदि आप मुझे नहीं प्राप्त होंगे तो मैं ये शरीर नहीं धारण कर सकती। तो इस प्रकार से वो गई, तो ऐसा नहीं कि बड़ी साधु की तरह गई और विनम्रता से, नहीं, लस्टी वुमन, जैसे जिस स्त्री में काम का पूरी तरह से आवेश हो गया है, और वैसी भावनाएं डिफरेंट हाथ के, मुंह के, आंखों के, सब प्रकार के स्टाइल करके वह हरिदास ठाकुर को बोल रहे हैं, जो पूरी तरह से काम से विवश हो गई थी, और वह हरिदास ठाकुर को अप्रोच कर रही है। तो ऐसा तो आप इससे सीख सकते हो उनके इस चरित्र से आगे चलकर कि हरिदास ठाकुर वो उसके इस हाव भाव से, उसके इस सौंदर्य से, इन सब चीजों से वो प्रभावित नहीं हुए। जैसे स्त्रियां हैं वो काजल लगाती हैं, तो क्यों लगाती है काजल? स्त्रियों में भगवान ने एक एक गुण दिया है, क्या दिया जानते हैं? कि आप स्त्री को किस भावना से देखते हो तुरंत पहचान जाती है, ये गुण एक्स्ट्रा दिया है तो ऊपर भागवत में लिखते हैं। तो इसलिए है ये स्त्रियों में एक गुण है कि आप किस भावना से, लस्टी भावना से देख रहे हो या फिर नॉर्मल भावना से देख रहे हो, स्त्री जान जाती है। और स्त्रियां जो काजल लगाती हैं ब्लैक, तो वो ताकि आप सीधा कहाँ देखो, जब देखोगे स्त्री को उसकी आंखों में देखो, और यदि आंखों में देख गए तो आपका आध्यात्मिक जीवन खत्म, ये एक साइन है। इसलिए आज के लोग ब्लैक चश्मे माताएं धारण करते हैं, ब्लैक कवर्स होते हैं, होते हैं ना, वो क्यों, ये है उसके पीछे जो रीजन है। तो आप किसी और चीज में आपका ध्यान है, सीधा आप क्या देखोगे, उनकी आंखों को देखोगे। जैसे आंखों में देखोगे कि आपका जो जीवन है एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन खत्म। तो इस प्रकार से भक्त जब भी देखते हैं स्त्रियों को किसी सेवा के संबंध में, तो हर समय चरणों में, जैसे स्त्री किसी न प्रकार से बात कर रही है या कुछ पूछ भी रही है, प्रभु जी ये कहाँ जाता है, टेम्पल कहाँ, या वाट एवर किसी भी सिचुएशन में, फेस्टिवल में जहाँ, तो जब भी बात करेंगे हमारा सर नीचे होना चाहिए, चरणों को देखना चाहिए, आंखों में आंखें ना डाल के देखे। ये ब्रह्मचारी के लिए बहुत ही खतरनाक है उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए। तो हरिदास ठाकुर उनको कहते हैं, जब उनकी इस बातों को सुनते हैं तो हरिदास ठाकुर कहते हैं, हरिदास कहे तो माँ करे मु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति जावत नहाय अमार। वेलकम वेलकम, आपका वेलकम है, स्वागत है, लेकिन मैं तुम्हें अंगीकार करूंगा, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करूंगा, क्योंकि भक्तों को क्या कहा जाता है, वांछा कल्प तरु बेच, सब प्रकार की इच्छा ले जाते भक्तों के पास, कल्प तरु है ना भक्त। तो उन्होंने कहा मैं आपको अंगीकार करूंगा, लेकिन बस एक चीज है मेरे, क्या, मेरा चांटिंग खत्म नहीं हुआ है। चांटिंग, हम कहते चांटिंग खत्म हो गया, हमारी स्थिति चांटिंग शुरू नहीं हुआ उससे पहले खत्म हो जाता है, ऐसी हालत है, ये डिजीज है। कहते जो कहते चांटिंग खत्म, उसका चांटिंग अभी शुरू नहीं हुआ। चांटिंग शुरू मीन्स नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गद गद रुद्धया गिरा पुलक निश्चितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। हे कृष्ण, कब वो दिन आएगा कि जब मैं आपके नामों को ग्रहण करूंगा, चांट करूंगा, तो मेरी आंखों से आंसुओं की धारा, ये है चांटिंग की शुरुआत। लेकिन हम तो चांटिंग शुरू करने से पहले उसको खत्म कर देते हैं, तो और बड़े गर्वित हो जाते हैं, पूरा अनाउंसमेंट कर देते हैं, आज तो मैं इतना चांटिंग कर लिया या सबसे पहले खत्म किया, ये कोई घोड़े की रेस थोड़ी है। ये तो सेवा है, चांटिंग क्या है, सेवा है, किसके लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। भक्ति मीन्स कि हर एक कार्य का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करो। प्रसाद भी ले रहा हो क्यों, मुझे अच्छा लगता है इसलिए ले रहा हूं, नहीं, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, उन्होंने कृपा करके दिया है। क्या पढ़ते क्या है हम प्रार्थना में, प्रसाद की प्रार्थना, कृष्ण बड़ा दयामय, और उससे पहले और क्या है, पूरा बोलिए हम महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याचार जड़े इंद्रियताय का जीवे पहले विषय सागरे तार मध्य जिवाति लोभमय सदुर्मति ताके जेता कड़िन संसारे कृष्ण बड़ा दयामय करे बारे जीवा जय स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई सही अन्नामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय। तो उन्होंने कृपा करके कृष्ण बड़ा दयामय करे बारे जीवा जय सो प्रसाद अन्न दिलो भाई। अरे भाई ये किसने अन्न दिया है, प्रसाद उन्होंने दिया है तो भगवान ने दिया है प्रसाद। तो फिर हम जैसे महाराज आपके लिए कुछ चीज भेजे तो नहीं चाहिए मुझे तो ये क्या हो जाएगा, अनादर। हाँ प्रसन्न होंगे क्या, नहीं होंगे। तो कृष्ण ने प्रसाद रूपी अपनी कृपा भेजी है क्योंकि हम सागर में गिरे हैं, ये जीवा 2 इंच की जीवा है इतना भगाती है। कल मैं वहां लेक्चर दे रहा था ऑडिटोरियम में, जीवा के बारे में बता रहा था कि 2 ही इंच की है। मैंने कहा दिल्ली में किसी भी कोने में चाहे हल्दीराम का दुकान हो तो 2 इंच की जीवा व्यक्ति को इतना स्पीडली भगाती है। वो कार से जा रहा है 100 का स्पीड, वो कार का स्पीड नहीं है, इधर का स्पीड है एक्चुअली। ये स्पीड नहीं होगा तो कार भी इतनी तेज नहीं चलेगी, तो धीरे चलेगी 40 के स्पीड में। तो ये टंग के बारे में तो बहुत चीजें आती हैं शास्त्र में, कैसे हमें ये कर लेती हैं, अपने कंट्रोल में करती हैं। इसलिए तो बोला है कि तार मध्य जीवा, कई इंद्रियों का वर्णन है लेकिन ये जीवा को स्पेसिफिकली बोला गया, इसका बहुत बड़ा काम है। तो फिर इन्होंने कहा लेकिन हरिदास ठाकुर का जीवा में क्या चलता था, कृष्ण नाम हरि नाम हरि नाम। तो उन्होंने कहा बस करूंगा तुम्हारी इच्छा को पूर्ति, लेकिन बस मुझे मेरा चैंटिंग खत्म करने दो। तावत तुम्हें वस्ते सुना नाम संकीर्तन नाम समाप्ति है ले करे मुझे तुम्हारा मन। तो उन्होंने कहा मैं तुम जो तुम्हारे मन में है इच्छा वही मैं पूर्ति करूंगा, लेकिन अभी मुझे मेरा चैंटिंग करने दो। इसी प्रकार से जब हम चैंटिंग करते हैं तो जो भौतिक इच्छा है वो वेश्या के समान है जो हर समय अप्रोच करती है, प्रभु जी है ना, मन में आती है लेकिन वेट वेट रुको 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 माता जी प्लीज रुको। भौतिक इच्छा क्या है, माता जी है, माता जी रुको अभी बस मुझे 7:15 तक वेट करो, फिर दर्शनार्थी में आप भी दर्शन करो और मैं भी दर्शन करूंगा, फिर उसके बाद गुरु पूजा, फिर उसके वहां मिलूंगा उसके बाद। इस प्रकार से ये वेश्या के समान भौतिक इच्छाएं हैं जो चैंटिंग में आती रहती है, और एक इच्छा आ गई और उसको हम जपा में थोड़ा सा एंटरटेन करने लेने, बस ये आखिरी है थोड़ा सा एंटरटेन करता हूँ। कई बार भक्त बड़ा आनंद अनुभव करते हैं, पूरा लीन हो जाते हैं उसी थॉट्स में, और फिर एक इच्छा को आप एंटरटेन करते हो तो वो ज्वालामुखी के समान है जो और ज्वाला निकलती है और कई सारे अनंत इच्छाओं आती है बाहर। इसलिए उसको कहना चाहिए कि प्लीज वेट करो, मुझे अभी बस मेरा चैंटिंग खत्म होने दो। तो ये हरिदास ठाकुर का जीवन है। तो फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि क्या हो गया उस लक्ष्मी हीरा का। फिर उन्होंने कहा कि बस आप बैठो यहाँ और ये जो नाम संकीर्तन में कर रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से, ध्यान से नहीं मतलब सुनो बस, मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करूंगा, लेकिन मेरे मुझे मेरा ये नाम संख्या संख्या पूर्वक नाम का जो मैंने व्रत लिया है वो खत्म होने दो। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का जीवन है जो बहुत ही ग्लोरियस और बहुत अद्भुत है और बहुत शिक्षाप्रद है और हमेशा स्मरणीय है। हमेशा स्मरणीय है और पूरा हमारे डे टू डे लाइफ के लिए प्रैक्टिकल है कि नहीं। हरिदास ठाकुर से हम सीख सकते हैं चैंटिंग के समय, क्या चीज नहीं सीख सकते हमारे हरिदास ठाकुर से, ऐसा है नहीं जो हम डेली अभ्यास करते हैं। तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे हरिदास ठाकुर का लाइफ। श्री हरिदास ठाकुर के चैतन्य की जय, गौरव प्रेमानंदे जय। इन्होंने कहा था जल्दी जाना है तो मैंने जल्दी
प्रभुपाद।
गौर लीला में